तप की भूमि, त्याग की कली और वैराग का सौरभ। हमारा जीवन जब तक तपस्वी जीवन नहीं है, तब तक हम विश्व की वह सेवा नहीं कर सकते जो हमें करनी है। इस जीवन को तपाना है, तपस्वी बनना है। त्यागमय जीवन जो है वो सर्वश्रेष्ठ जीवन होते हैं, और जब तक जीवन में वैराग नहीं, वैराग का सौरभ, वैराग की सुगंध इस जीवन में नहीं, तब तक भी जीवन में दिव्यता नहीं आती। आज सुबह की मुरली में बाबा ने कहा है, रिकॉर्डिंग का समय चल रहा है, ये धर्म की, राज्य की, संस्कारों की, संबंधों की, सबकी रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, सर्व के सर्वश्रेष्ठता की रिकॉर्डिंग अभी हो रही है। प्रश्न उत्तर में बाबा ने कहा है, इसलिए जीवन को त्यागमय, तपस्वी और वैराग से परिपूर्ण बनाना है। सबसे पहले चर्चा करते हैं तपस्या की। तपस्या के लिए कुछ बातों की आवश्यकता है, या फिर कहो वो सारी बातें जब एकत्र आ जाती है तब उसे तपस्या कहा जाएगा। एक पहली बात, ऐसी कुछ बातें हम देखेंगे कि जिससे हमें अपना जीवन तपस्वी बनाना है। सबसे पहली और मुख्य बात है मौन। तपस्या के लिए क्या चाहिए? मौन चाहिए, मन का मौन बाद में, पहले तो मुख का मौन। पिछले संडे की मुरली, बहुत बोलने वाले, जोर से बोलने वाले, ज्यादा बोलने वाले, बोल भी क्या है, एनर्जी है, संकल्प एनर्जी है तो बोल भी एनर्जी है। संकल्प भाग्य की एनर्जी है, संकल्प की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है। वैसे भी तुम्हारी वाणी कैसे होनी चाहिए? लौकिक वाणी नहीं, कौन सी वाणी, कौन सी वाणी? अमृतवाणी, देववाणी, आकाशवाणी। ऐसी हमारी वाणी होनी चाहिए। तो मौन जो है एक शस्त्र है। बोल में हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। यदि कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक भी नहीं है वो भी अगर मौन रह जाता है तो उसमें अनंत शक्तियां प्रकट होने लगती है स्वतः ही। इसके लिए सुबह 8 बजे तक मौन, जितना हो सके। अगर कोई इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, शाम को फिर से ऐसा मौन। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्न संशया। गुरु बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है, शिष्य बहुत सारे बैठे हैं, हजारों, कोई प्रश्न भी नहीं पूछ रहे, परंतु गुरुस्तु मौनम, उसका मौन ही शिष्यस्तु चिन्न संशया। शिष्य के संशय मौन से ही नष्ट हो रहे हैं, इतनी अपार शक्ति मौन में है। साइलेंस जो है एक पावर है। सुबह से लेकर रात तक केवल बोल ही रहे, बोल ही रहे, बोल ही रहे, एनर्जी कैसे आएगी? सला कल्प तरुण चे आरव चेतना चिंता मणिन से गाव, बोलते जे अर्णव पीयूषा चे। यह स्थिति कैसे आएगी? मार्तंड जो तापहीनम, यह स्थिति कैसे आएगी? उस मौन से। तो अपने अंदर मौन की संपदा को जमा करना है। मौन शक्ति है और बिना मौन के तपस्या नहीं हो सकती, क्योंकि हम दिन भर बाह्यमुखी है, कारण कोई भी हो, चाहे सेवा ही क्यों ना कारण हो, परंतु है फिर भी बाह्यमुखता। आत्मा जन्म जन्म से बाह्यमुखी रही है, अब उसे अंदर मुड़ना है, अंतःकरण की यात्रा का आरंभ करना है, अंतः चेतना में प्रवेश करना है, उस अंतस के जगत में जाना है जहां वो आलोक है। मुरली के ये जो शब्द है, केवल शब्द ना रह जाए परंतु अनुभूति बन जाए। और जब तक हम अनुभव नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद ने अपने लेक्चर में एक जगह कहा था, धर्म की परिभाषा दी थी एक ही शब्द में, रिलीजन इज रियलाइजेशन। जब तक हम अनुभव नहीं करते तब तक हम धार्मिक नहीं है। धर्म की परिभाषा, धर्म की जो नींव है वो अनुभव है, और अनुभव के लिए वह गहरा मौन आवश्यक है। एक है अनुभव, दूसरा है अनुभूति, दो शब्द है, दोनों में भी भेद है थोड़ा। शब्दकोश तो कहता है दोनों समान है, परंतु समान नहीं है। अनुभव फिर भी व्यक्त किया जा सकता है, अनुभूति शब्दों से परे है। अनुभूति वह अवस्था है चेतना की जहां पर शब्द गिर जाते हैं, वो एक तादात्म्य की अवस्था है। काम क्रोध निमले ठाईचे झाला स्वयमेव पांडुरंग, ऐसी वो अवस्था। कृष्ण ध्याति गीति, कृष्ण गाती गीति, हे ची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने, ऐसी गोपियों की जो अवस्था का वर्णन है वह मौन है। बाबा कहते हैं मन का डांस, अगर मौन जीवन में खोया है तो उसे पुनः लाना है। तो सबसे पहला मौन, दूसरा एकांत, तपस्या के लिए दूसरा है एकांत। जितना गहरा एकांत होगा, एकांत का एक अर्थ तो सभी जानते, एक के अंत में खो जाना, हम उस एकांत की बात नहीं कर रहे, वो तो बहुत ऊंची अवस्था है, हम स्थूल एकांत की बात कर रहे हैं। स्थूल निरंतर मनुष्य के समुदाय में रहते रहते आत्मा बाह्यमुखी हो जाती है, कुछ समय दिनचर्या में या हफ्ते में निकालकर अलग होना होता है, नहीं तो चार्ज कैसी होगी बैटरी। एकांत, विदेश में एक संत हुआ है एकहार्ट, उसने अपने जीवन में एक बहुत अच्छी चीज लिखी है। वो लिखता है कि एक दिन मैं परमात्मा के याद में एक झाड़ के नीचे बैठा था एकांत में, और एक मित्र अचानक आ गया, और वो मित्र कहने लगा कि तुम अकेले थे करके मैं तुम्हारे पास आ गया तुम्हें कंपनी देने के लिए। वो कहता है मैं अब तक कंपनी में था, तुम आए तो मैं एक अकेला हो गया हूं, तुम्हारे आने से मैं अकेला हो गया हूं। चिरा चिरा जुड़ला माधा मीच माधा संग धालो, ऐसी चेतना की जो अवस्था है जिसमें और किसी भी बाह्य चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंदर ही भरा हुआ है। अंदर इतना भराव, फुलफिलमेंट, कि फिर किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। ऐसा स्वयं को एकांत में ले जाना है, और ज्ञान का श्रेष्ठ मनन और चिंतन एकांत में ही हो सकता है। तीसरा अंतर्मुक्ता, मौन, एकांत, और तीसरा अंतर्मुखता। स्वयं के अंदर चले जाना, स्वयं को देखना, स्वयं को जांचना, स्वयं की गलतियों पर चिंतन करना, स्वयं की कमी कमजोरियों को देखना। कौन सा ऐसा संस्कार है? एक ही शायद होगा हर आत्मा का, जिस वजह से वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रही है। एक ही ऐसा संस्कार है, और वो एक दिन का नहीं है, कई दिनों का है, कई महीनों का है, कई वर्षों का है, शायद बचपन का है। वो काम हो सकता है, कामना हो सकती है, क्रोध हो सकता है, लोभ हो सकता है, अहंकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, अविश्वास हो सकता है, सेंसिटिव नेचर हो सकता है। किसी ने थोड़ा भी कुछ कह दिया दुखी, छुई मुई जिसको बाबा कहते हैं। एक ही संस्कार है, परंतु जा नहीं रहा है। हर प्रयत्न संभव प्रयत्न कर लिया, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया और दुखी, किसी ने गलत व्यवहार किया दुखी, बार बार दुख को लेने का संस्कार, एब्जॉर्ब करने का संस्कार, शायद ये संस्कार है। कैसे हमें पता चलेगा? जब तक हम स्वयं को नहीं देखते। खुद खुद को देखना है, कहां मैं हूं। जब से इस ज्ञान मार्ग में आए और तब से अब तक। अभी एक मिनट फिर से सभी अलर्ट होके बैठेंगे, और इसमें ऐसा देखना है, उस समय को देखो कि जिस दिन हम ज्ञान में आए थे, उस दिन से लेकर तो आज दिन तक इस ब्राह्मण जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, उन सबको याद करो। ऐसी कुछ घटनाएं हो सकता है वो धोखा हो, अपमान हो, निंदा हो, ग्लानि हो, कलंक हो, क्रोध किसी का हम पर हो गया हो, किसी का अविश्वास हो गया हो, वो सारी घटनाएं और हमारी प्रतिक्रिया क्या रही उसमें, एक सूक्ष्म अवलोकन करना है। हम कुछ बोलेंगे नहीं, दो मिनट के लिए केवल याद करना है, अपने ही जीवन को आंखों के सामने देखना है। ओम शांति। ओम शांति। चौथा, कर्मेंद्रिय जीत। इन कर्मेंद्रियों में चंचलता भरी है, जन्म जन्म की चंचलता और जन्म जन्म की वासनाएं इनमें समाई हुई है। कैसे ये कर्मेंद्रिय, कैसी ये सारी इंद्रिय वश में आ जाए, इसकी क्या साधना है? क्योंकि जब तक इंद्रिया भाग रही है, इंद्रिया वह देखना चाहती है जो उसे नहीं देखना, वह सुनना चाहती है जो उसे नहीं सुनना, उसे स्पर्श करना चाहती है जो उसे नहीं करना है। गीता में एक जगह लिखा है, जो भी सुख जो स्पर्श से उत्पन्न होता है, इंद्रिय इंद्रियों को स्पर्श करने से जो भी सुख उत्पन्न होता है, अंततोगत्वा वो दुख में परिणीत होता है। हर वो सुख जो कि स्पर्श से उत्पन्न है, तो जो इंद्रिय बाहर भाग रही है उनको वश में करने की साधना, उनकी गति जो है वो बाहर की तरफ है। जितने विकार आज संसार में है, क्यों हो रहे हैं, कहां से सीख रहे हैं लोग, जरूर कुछ देख रहे हैं आंखों से, वह देख रहे हैं जो उन्हें देखना नहीं है, वह सुन रहे हैं जो उन्हें सुनना नहीं है। अपवित्र वचन नको माझ्या मुखे त्याहून मुकाच बरामी, पापाची वासना नको दाऊ दोड़ा त्याहून अंधड़ाच बरामी। क्यों ऐसा संतों ने कहा है? क्योंकि विकार इंद्रियों के द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं। इन सभी इंद्रियों को वश में करना एक एक इंद्रिय की भी साधना है। इसके लिए कहा ये जो मनन चिंतन है जो भी दिखाई देता है यहां पर उन सबको ज्ञान से जोड़ना है। झाड़ दिखाई देता है, झाड़ के लिए बाबा ने क्या कहा है? पत्थर दिखाई देता है, पत्थर के लिए ज्ञान में क्या कहा गया है? पत्ते दिखाई देते हैं, पत्तों के लिए बाबा ने क्या कहा गया? सूरज दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उसके लिए ज्ञान में क्या क्या कहा गया है? अपने बुद्धि को ज्ञान युक्त बना देना। जब तक ये कार्य नहीं होगा यह देह आकर्षित करेगा। अस्थि पंजर है परंतु आकर्षित करता है, खींचता है इसमें कुछ भी नहीं, भ्रम है एक रीति से। इस देह का सौंदर्य देह में कहां? परंतु फिर भी संसार विक्षिप्त है। इस देह की सुंदरता से तथा कथित सुंदरता, इन कर्मेंद्रियों को तपाना होगा। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा है जब तुम्हारी कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी समझना तुम केवल त्रेता तक पहुंचे हो, सतयुग नहीं त्रेता। तो चौथा अभ्यास करना है इंद्रियों की ट्रेनिंग, उसे वही देखने देना है जिसके लिए श्रीमत है। हम देखते हैं कई लोग रात में इंटरनेट और टीवी देखते देखते कभी 11 बज जाते हैं, कभी 11:30 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं। फिर कैसे अमृत वेला शक्तिशाली होगा? और जो अमृत वेला ही सुप्रीम चार्जर से कनेक्ट होकर चार्ज नहीं होते वो विश्व को प्रकाश कैसे देंगे? इसलिए कर्मेंद्रिय जीत। पांचवा साक्षी भाव, सब कुछ करते हुए और सब कुछ देखते हुए भी साक्षी की साधना। 24 घंटे में एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करनी है, 24 घंटे में एक बार। बेस्ट जो टाइम है वो है शाम का या सोते समय। कौन कौन सी पॉइंट्स ड्रामा की? ये ड्रामा कल्याणकारी है, हर सीन में कल्याण छिपा हुआ है, अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है। आज ही की मुरली में विदेशियों से मुलाकात, जब बाबा को प्रश्न किया गया बाबा हमें डबल सर्विस करने को क्यों कहा जाता है, तो बाबा ने क्या उत्तर दिया? एक समय आएगा कि छोड़ देंगे, छुटा देंगे उससे, परंतु तब तक जो भी निमित्त आत्मा है तुम्हें कह रही है उसमें ही कल्याण है ऐसा समझना। ये नहीं समझो हम सरेंडर नहीं है, मेरा मन, ये मन कहां से आया? ड्रामा हुबहू रिपीट हो रहा है, ड्रामा अविनाशी है, ड्रामा क्या, कौन सा ज्ञान वही पूछ रहे हैं, कौन सा? त्रिकालदर्शी है, हमें ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान है। और ड्रामा जू मिसल चलता है, टिक 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 होती रहती है। और ड्रामा हमारी मां है। और हर एक का पार्ट अपना अपना है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई ज्ञान में आ जाए, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा ज्ञान में चले, पति ज्ञान में चले, पत्नी ज्ञान में चले, मां बाप ज्ञान में चले, या कोई मित्र संबंधी ज्ञान में चले, हम केवल उन्हें ज्ञान दे सकते हैं बस। बाद में हरेक का पार्ट अपना अपना है, हरेक का अपना अपना पार्ट भी है और हरेक का अपना अपना भाग्य भी है, और ज्ञान में आने का समय भी अपना अपना है। वो तभी आएगा जब उसका समय होगा। समय से पहले भाग्य से ज्यादा, गीत है ना, किसने क्या पाया है, ड्रामा, ड्रामा के हम पार्टधारी है। ड्रामा में हर एक्टर कैसा है, हीरो पार्टधारी नहीं, वो दूसरा बताओ, एक्यूरेट और एक शब्द है ड्रामा में हर एक्टर, निर्दोष, निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। ड्रामा का हर एक्टर संपूर्ण निर्दोष है, ड्रामा न्यायकारी है, यहां किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, सारे झगड़े खत्म। ड्रामा भगवान को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद होना चाहिए। ड्रामा विविधतापूर्ण है, वैरायटी है इस ड्रामा में। किसी भी एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से, एक आत्मा के संस्कार ना मिले दूसरे से, एक की बीमारी ना मिले दूसरे से, एक का स्वभाव ना मिले दूसरे से, एक का प्रारब्ध ना मिले दूसरे से। ड्रामा बामा, ड्रामा परफेक्ट है, इसको बदला नहीं जा सकता, एक सेकंड की भी अदली बदली नहीं हो सकती। ड्रामा में जो भी सीन आता है, बहुत पावरफुल पॉइंट है ये, नथिंग न्यू, आश्चर्यचकित नहीं होना है, ये ऐसा क्यों हो गया, ये और इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, जिस पर इतना विश्वास किया, जितनी जिसकी इतनी पालना की, वही हमारे विरुद्ध विद्रोह कर दे, हमारी निंदा करे, ग्लानी करे, अपमान करे, धोखा दे दे, नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाबा ने कभी सोचा था जो उनके मित्र थे वो भी सारे शत्रु बन गए, सारा समाज दुश्मन बन गया, निंदा की, ग्लानी की, क्या क्या लिखा अखबारों में, जो तो अभी जिसका कहीं लिखा ही नहीं है क्या लिखा था उस समय, इतनी ग्लानी कर दी थी। ड्रामा की ये सारी पॉइंट्स 24 आवर्स, 24 घंटे में एक बार याद करना है, मन ही मन, अपने ही मन के अंदर। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में हर एक्टर निर्दोष है, ड्रामा में वही हो रहा है जो होना चाहिए था, ड्रामा सत्य है। ड्रामा बिंदी लगाओ, बाबा ने कहा तीसरा, थर्ड बिंदी, और ड्रामा अनादि है, अविनाशी है, कब चालू हुआ कब अंत होगा, ड्रामा में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जो हो रहा है इवन भगवान भी नहीं करता है उसमें इंटरफियर। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तसफल चाखा, इस संसार में कर्म को प्रधान कर रखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, वो राम उसमें इंटरफियर नहीं करता है, जो होगा वो होना ही है। एक माता, सबको पता होगा ये उदाहरण, काफी यज्ञ में चर्चा की जाती है इसकी, एक माता ब्रह्मा बाबा के पास आई थी और उसने कहा था कि मेरे जीवन में एक ऐसी घटना है कि मैंने किसी को नहीं बताई। कौन सी घटना? तो उसने कहा था जब यज्ञ भारत में आया पाकिस्तान से, आग लगा दी थी हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, जो भी दंगे हुए थे उसमें मेरे घर को भी आग लग गई थी और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ही छोटे। मैंने अपने को बचाने के लिए उन दोनों बच्चों को नीचे किया, उनके ऊपर मैं खड़ी हो गई और फिर मुझे खींच लिया गया, अपने दोनों ही बच्चों को मैंने मार दिया, और उसके बाद में वो ज्ञान में आई। अब जब से ज्ञान में आई तब से एक दुख, एक पश्चाताप, एक आत्मग्लानी, अपराध भाव कि मेरे से इतना बड़ा पाप हुआ है, जबकि भगवान कहता है कि किसी को दुख मत दो, अब मैं क्या करूं? क्या यह ड्रामा बदला जा सकता है? क्या यह सीन ड्रामा से डिलीट की जा सकती है? तो ब्रह्मा बाबा ने उससे कहा था, अगर वो ना होता तो ये भी ना होता, वो हुआ करके तो तुम ज्ञान में आई, अगर वो ना होता तो ये भी न होता। इसके लिए इस जीवन में जितने भी दुखद दर्दनाक आत्मा को हिलाने वाली बातें हुई है, यहां तक कि ज्ञान में आने के बाद भी, वो सभी हमें परिपक्व बनाने के लिए हुई है। इस ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल है। एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है, एक एक ब्राह्मण आत्मा एक एक पेपर है, और यह परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल है। हमें इसे पास करना है, डिग्री लेनी है, यहां से पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लेना है इसी परिवार से। इसके लिए 24 घंटे में एक बार, हो सके तो ज्यादा बार, फिर धीरे धीरे, या सोते समय ड्रामा की सारी पॉइंट्स पहले तो लिख के रखो, कम से कम 20 पॉइंट्स, और इन सारी पॉइंट्स को मन ही मन रिपीट भी करोगे तो वो जो सीन है उसमें जो इतना तदात्म्य हो गया है, पकड़े हुए है उस सीन को, उससे थोड़ा हम अलग हो जाएंगे। जो अटैचमेंट है उस सीन से, बार बार उसी को याद करते रहते, बार बार उसी का स्मरण, और उतना ही नहीं दूसरों को भी बताते रहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उसी का ही वर्णन, इतने साल हो गए उसको फिर भी भूला नहीं है उसको, या कोई अच्छी घटना भी हो सकती है, पर उसी को ही रिपीट कर रहे हैं, उसी को ही रिपीट कर, उस मेमोरी से, उस स्मृति से आत्मा छूट नहीं पा रही है। जीना वर्तमान में है, जी रही है अतीत में। अगर ऐसा है तो साक्षी भाव कैसे आएगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, गीता में लिखा है, जन्म को देखो उसमें दुख है, मृत्यु को देखो उसमें दुख है, जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा उसमें दुख है, व्याधि बीमारी उसमें भी दुख है, चारों ही चीजों का चिंतन करो और अलग हो जाओ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दर्शन करो इसका, इस दुखों का, अनित्यम असुखम लोकम। हे अर्जुन, ये संसार अनित्य है और दुख से भरा है। तो साक्षी भाव, छठवां एक रसस्थिति, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय मान अपमान निंदा स्तुति सब होगा यहां पर। ऐसा कोई व्यक्ति है जो महान बना और इन सब से नहीं गया? इतिहास में कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी ग्लानि निंदा अपमान नहीं हुआ है। जो भी महान कार्य हुए हैं इन सब से गुजरना होगा। तुका मने संत सोसी जगाचे आघात, इस संसार के जो आघात सहन करे वही संत है। तो जो भी इस तरह के पेयर, जिसको कहते हैं ड्यूअलिटीज, सुख दुख जय पराजय, इसमें जो नहीं हिलता है वह योगी। अगला है तपस्या का एक बहुत मुख्य अंग, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने एक बहुत श्रेष्ठ उदाहरण छोड़ रखा है। किताब लिखी गई है उनके जीवन पर, जगदीश भाई ने जीवन को पलटाने वाली कहानी। कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक वो पढ़ी नहीं है, वो हाथ खड़ा करो। दो भाग है, भाग एक भाग दो। जब तक हम उस व्यक्ति का जीवन नहीं पढ़ेंगे जिसके द्वारा ये संस्था चालू हुई, हमें इस संस्था के बारे में वो लगाव, वो प्रेम, वो घनिष्ठता उत्पन्न नहीं होगी। जब तक हम इस यज्ञ का इतिहास स्टडी नहीं करते, क्या क्या एक एक दादी ने सहन किया है, कैसे कैसे सहन किया है, कितनी यातनाएं सहन की है, किस लिए? एक ही चीज के लिए, पवित्रता। जब तक यह इतिहास स्टडी नहीं करते, हमारे अंदर वो एकग्र स्थिति नहीं आ सकती, वो पवित्रता के लिए जो प्रेम है वह नहीं आ सकता है, वो संकल्प निर्माण नहीं हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पवित्र रहना ही है। एक रस स्थिति। तो ऐसी कुछ बातें हैं तपस्या के बारे में। त्याग, त्याग हमारा ऐसा ना हो कि जिसमें दिखावा हो, आडंबर हो, दंभ हो। त्याग सहज हो, जैसे कोई वृक्ष होता है, पका हुआ फल ऐसे गिर जाता है, वो फल को भी नहीं पता, उन पत्तों को भी नहीं पता कब गिरते हैं वो। हां, पर अगर उस वो फल को खींचा जाए तो चोट पहुंचती है। ऐसे संसार ऐसे गिर जाए नीचे, ऐसा हमारा त्याग हो जाए, उसका कोई अभिमान भी नहीं। सहज त्याग दिखाते हैं कि वो एक व्यक्ति था, हमेशा जहां प्रवचन करता था, एक बात हमेशा कहता था कि मैं बहुत बड़ा साहूकार था 30 साल पहले, और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी को लात मार दी। अभी उसको 30 साल हो गए, परंतु हर प्रवचन में यह बात कहता था। और उस समय जो पेपर में न्यूज आई थी, उसकी कटिंग अभी भी जेब में है। किसकी? कि मैंने त्याग कर दिया। त्याग तो किया, परंतु किसी एक दिन किसी आदमी ने पूछा, लात तो मार दी पर शायद लात ठीक से लगी नहीं। अभी भी स्मरण है, ये छोड़ा, वो छोड़ा, वो छोड़ा, वो छोड़ा, वो छोड़ा, वो छोड़ा। ऐसा त्याग नहीं, ऐसा दंभ वाला त्याग नहीं, ऐसा दिखावे वाला त्याग नहीं, सच्चा त्याग, सहज हुआ हुआ त्याग। व्यर्थता को जान लिया, काम विकार की व्यर्थता, क्रोध की व्यर्थता को इतना जान लिया कि वो स्वतः ही छूट गया, छोड़ने का प्रयत्न नहीं, स्वतः हो गया त्याग। और अंतिम है वैराग, वैराग का सौरभ। जहां राग नहीं वह स्थिति। ब्राह्मणों के समाज में वैराग की बहुत कम चर्चा है, सेवाओं की चर्चा बहुत है, वैराग की बहुत कम। और बाबा ने तो कह दिया है, बिना बेहद के वैराग के तुम सकाश नहीं दे सकते संसार में, आत्माओं को मदद नहीं कर सकते, और ना ही स्वयं की स्थिति शक्तिशाली बना सकते हो। हर उस वस्तु से वैराग जो कि पथ में बाधा है। इस विलासिता में इतने वर्ष डूबे रहे, इस भोग विलास के संसार में इतना दिन डूबे रहे, अब भी वही करना है? कब वैराग उदय होगा? और वैराग भी दिखावा नहीं है, दंभ नहीं है, आंतरिक अवस्था है चेतना की, जिसे यह पता चल गया है कि यहां की कोई वस्तु मुझे भर नहीं सकती, वो आनंद नहीं दे सकती। तो जब ऐसी तप की भूमि होगी, तब त्याग की कली खिलेगी, और फिर वैराग का सौरभ, वैराग की वह सुगंध उठेगी, जो जीवंद में विलासिता की दुर्गंध है, वह सड़ांध को समाप्त करेगी। तो ऐसे त्यागी, ऐसे वैरागी और ऐसे तपस्वी हमें बनना है। अच्छा, ओम शांति।